तब फिर 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराते हैं, भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्वरूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। अब अर्जुन की एक प्रार्थना है, जब इतनी सुंदर बातें उसने सुनी भगवान के मुख से अपने स्वरूप के बारे में, तो अब उसके अंदर जिज्ञासा हो गई कि मैं उस स्वरूप को देखूं कि वो स्वरूप कैसा होगा, कि 81 श्रेणियों का वर्णन करने के बाद भी अगर ईश्वर की तुलना उससे नहीं हो पाती है तो वो स्वरूप कैसा होगा, वो स्वरूप में देखना चाहता। तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया उससे मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है, और इसलिए यदि, कितनी विनम्रता है, इसलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। भावार्थ यह है कि हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, समर्थ बनाते हैं, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। तो जैसे अर्जुन को मिली बौद्धिक क्षमता, आप सबको मिली हा? तो अब भगवान उसको दिव्य चक्षु देते हैं जिससे अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और सबसे पहले जो स्वरूप का दर्शन कराया, संजय उसका वर्णन करते, क्योंकि ये स्वरूप को सिर्फ 4 लोगों ने देखा, अर्जुन ने देखा, वेदव्यास जी ने देखा, संजय ने देखा और भीष्म पितामह ने देखा। कहा जाता है ये 4 लोगों ने उस स्वरूप को देखा। तो संजय उसका वर्णन करता है और वर्णन करके धृतराष्ट्र को सुनाता है कि आकाश में 1,000,000 सूर्य उदय होने जितना प्रकाश होता है वह उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा, और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया और उसके बाद श्री कृष्ण का स्वरूप विराट रूप दिखाया जिसमें अनेकों चेहरे, और ये चेहरे किस चीज का, कि श्री कृष्ण ने जो पुनर्जन्म लिए हैं हर बार अलग अलग समय पर, तो हर जन्म का वो जो चेहरा है वो उस विराट रूप में दर्शन कराया। तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा निराकार है, तेजोमय है, सूर्य के समान है, प्रकाशमान है, और श्री कृष्ण के कितने पुनर्जन्म है, ये दोनों स्वरूप एक साथ दिखाए और इस रीति से उसका अज्ञान दूर किया कि सारे देवताओं और कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को देख रहे हैं। फिर भगवान से वो कहता है, आप आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त हो। भगवान आदि मध्य अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त है, और श्री कृष्ण आदि मध्य अंत में पुनर्जन्म लेने वाले शंख चक्र गदा पद्म युक्त सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज हो। आप सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप को अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। आप इस जगत के परमाश्रय है, आप सनातन धर्म के रक्षक है, परमात्मा को वो कह रहा है। ये स्वरूप, दोनों स्वरूप जब देखा, परमात्मा का स्वरूप और श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म वाला स्वरूप, वो दोनों स्वरूप को देखा। आप लोगों ने भी ये देखा होगा या समझा होगा गीता पढ़ते समय कि एक चेहरा उसमें एक ऐसा आता है कि जहां से आत्माएं जा रही है उनके मुख में जाती है, और दूसरी ओर देवता बन करके एक एक देवता नीचे उतर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपने एक चेहरा देखा होगा, एक चेहरा जहां से सारे आत्माएं खींचे जा रहे थे और दूसरा एक चेहरा दूसरी ओर जहां से देवता बन करके नीचे उतर रहे थे। तो इस तरह जब स्वरूप देखता है तो अर्जुन कहता है, इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन हो, क्योंकि जिस चेहरे से वो जा रहे थे, है ना, खास आप लोग ने अगर महाभारत की वो सीरियल देखी हो तो उसमें ये स्पष्ट दिखाया है कि एक ओर से जा रहे हैं और दूसरी ओर से देवता बनकर के निकल रहे हैं। तो अर्जुन कहता है कि आप कौन हो, मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन हो, क्योंकि वो चेहरा जो दिखाया एक साधारण मनुष्य का चेहरा दिखाया है। तो वो आदि पुरुष कौन हो, मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं, मैं लोकों को नाश करने वाला महाकाल हूं, इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो। भावार्थ ये मारने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये महाकाल के द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो तुम्हारा जो मोह है उस मोह को तुम नष्ट कर दो, तुम निमित्त बन जाओ, अपने आप को निमित्त समझो। मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं ये समझो, ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, तेरा कोई नहीं है, तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। कहा ना वो माँ बाप बच्चे को क्या कहते हैं, अरे मारो गोली, तुम उसके साथ क्यों खेलने जाते हो? तो भगवान भी उसको कहते हैं, ये तो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, लेकिन जो तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, उसको नष्ट करो और तुम निमित्त बन जाओ, अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझो, माध्यम समझो। फिर भगवान ने एक और गुह्य बात यहां समझाई कि इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य परमात्मा का क्या है, कि समस्त नकारात्मक शक्तियों को नाश करना है। किसी व्यक्ति को नाश करने की बात नहीं है, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने की बात है। अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना भी अधिक क्यों ना हो, लोक शैकारी महाकाल की शक्ति ने पहले से ही उनको मार दिया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव ही है, इसलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुनर्निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल समर्थ है। इसलिए सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे, मोह माया में उलझकर अपने जीवन को नष्ट न करे, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करे। पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता का ही केवल एक साथ दे रहा है। तो हमें क्या करना है, सफलता को साथ देना है, पुनर्निर्माण के कार्य के लिए साथ देना है, या विनाश का, महाकाल के द्वारा जो विनाश होना है उसका हिस्सा बनना है? इसीलिए कहावत है दुनिया में भी, आइदर यू आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आइदर यू आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। या तो आप समस्या स्वरूप हो या आप समाधान स्वरूप हो, क्या बनना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते, कंस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहते हैं या डिस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहते हैं? ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस ओर जाना है। और अगर कंस्ट्रक्शन की ओर, पुनर्निर्माण की ओर, तो हम ईश्वर के साथी बन जाते हैं, और जब ईश्वर के साथी खुदाए खिदमतगार बन जाते हैं तो उसका भी एवज ईश्वर दे देता है, वो कभी किसी का रखता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता कि ईश्वर का साथ देना यानी सफलता को साथ देना है। तब अर्जुन बहुत सुंदर रीति से, अब जब रियलाइजेशन हो गया तो कैसे क्षमा मांग रहा है, किस बात की क्षमा, कि बार बार जो वो प्रश्न कर रहा था ना, कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है, कैसे नहीं जानता, ये जो सवाल उसका बार बार था, अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ जब वो उस दिव्य स्वरूप को देखा। तो भगवान को वो कहता है, वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे न करें, क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदिकर्ता हो, अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों का ईश्वर है, सर्वशक्तिमान परमात्मा से समस्त देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है, परमात्मा से भी प्रकृति को भी और मनुष्य आत्मा को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय एवं सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकृति नहीं है। आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब अर्जुन समझ गया, अब उसका यह सवाल नहीं है कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है। इसलिए हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानता के कारण जो सवाल बार बार आपको पूछा, मन क्यों वश में नहीं होता, मन कैसे वश में होऊंगा, आपको कौन जानता है कौन नहीं जानता है, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, ये सब जो सवाल किए, तो अब उसको अपनी गलती जैसे महसूस हो रही है कि मैं कितने फिजूल के सवाल कर रहा था। तो कहते ये मेरा अपराध है कि मैं किसको सवाल कर रहा था, भगवान को सवाल कर रहा था। तो ये इतना उसको डीप रियलाइजेशन होता है और इसीलिए वो क्षमा मांगता है। फिर भगवान कहते हैं, मेरा ये रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा, आप सबने देखा, आप सबने इस रूप को ज्ञान के चक्षु से देखा, देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता। मनुष्य कितना भी मंत्र जाप तप दान पुण्य यज्ञ वेद पढ़ ले, उससे मैं देखा नहीं जा सकता। गीता में ये बात स्पष्ट कर दी भगवान ने कि उससे मैं देखा नहीं जा सकता। तब फिर भक्ति